शांति। हमारे बीच में वो महान आत्मा विराजमान है जिन्हों के हर कर्म हर व्यवहार एक श्रेष्ठ कर्मों की यादगार बन करके यज्ञ के अंदर एक अमिट छाप जिन्होंने डाली है। ऐसी त्यागी तपस्वी और बेहद की वैराग वृत्ति जिन्हों के जीवन के अंदर त्रिवेणी संगम के रूप में दिखाई देता है, ऐसी हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय निर्मला दीदी जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप वो आत्मा हो जो साकार बाबा के हस्त कमलों से पली हुई, वो दिव्य मूरत आत्मा जिन्हों को बाबा हमेशा कहते थे, ये मेरी निर्मल बच्ची पूरा निर्मलता का आश्रम है, जिनकी दिल सच्ची है, जिनकी दिल साफ है और उन्होंने दिल के अंदर भगवान को बिठा दिया है। वैसे आप डॉक्टर थे लेकिन फिर बाबा ने आपके अंदर निर्मलता, पवित्रता, सत्यता, दिव्यता, एक बल एक भरोसे को देख करके विदेश सेवा के निमित्त बनाया। कई वर्षों तक आपने ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से जुटे हुए अनेक कंट्री के अंदर सेवाएं दी, सुचारू रूप से सेवाएं आप वहां चला रहे थे। हजारों आत्मा तो नहीं कहूंगी बल्कि लाखों आत्माओं की बुझी हुई ज्योति को आपने जगाया। दिल शिकस्त आत्माओं के अंदर आपने फिर से उम्मीदें जगाई, निर्बल आत्माओं को बल प्रदान किया, कमजोर आत्माओं को शक्ति दी और ऐसी सेवाएं करते करते अचानक ड्रामा के अंदर यहाँ हमारा जो हेडक्वार्टर है, आवश्यकता पड़ी सेवा की और आपने विदेश सेवा को छोड़ी तो नहीं है, अभी भी दीदी संभालते हैं, लेकिन यहाँ आ गए आप। अभी वर्तमान समय ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर हो और यहाँ रहते रहते भी आप विदेश सेवा को देखते हो, संभालते हो और विदेश सेवा की जो मुख्य पांच बहने हैं उसमें आपका एक विशेष स्थान है। तो आज हम दीदी जी से सुनेंगे श्रीमत का हाथ और साथ, डॉक्टर निर्मला दीदी।
ओम शांत। बीना बहन ने आप मेरा परिचय तो दिया, अभी मैं आप लोगों का परिचय इस रीत से लेंगी कि ज्ञान में पांच साल से कम, इनमें से आप में से कितने जरा हाथ उठाना, पांच से कम, अच्छा पांच से दस, अच्छा दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, बीस के ऊपर, अच्छा तो वैरायटी गुलदस्ता है। तो बाबा के हम बच्चे बने और बाबा ने हम बच्चों को सिर्फ ज्ञान नहीं दिया परंतु उसके साथ साथ योग के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी धारणा कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रस्म रवाज सब बदल दिया तो पूरा हमारा परिवर्तन कर दिया। हमारा परिवर्तन देखकर घर वालों को क्या हुआ, आपके परिवार वालों को है किसी को आश्चर्य हुआ होगा, किसी को शौक आया होगा, ज्यादातर तो शौक आता है कि ये क्या सब कुछ छोड़ दिया, इसमें भी जो शादी शुद्धा है उसके घर वाले ने तो बिल्कुल शोर मचा दिया कि ये क्या दिमाग खराब हो गया है क्या, किसी शास्त्रों में नहीं सुना, कहां भी सुना नहीं सत्संग में, ये आपका सत्संग कैसा। और कोई तो खुश भी हुए कि हाँ भाई वहां जाने के बाद ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने के बाद अभी गुस्सा नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है, रूठना नहीं है, मांग नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए नहीं है। परंतु मेजोरिटी है उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता और जो नए आते हैं वो डरते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे ये सब छोड़ना पड़ेगा, अपना मौज शौक घूमना फिरना खाना पीना ये सब छोड़ना पड़ेगा, इसलिए दूर से ही देखकर आपका जीवन भल अच्छा है बाकी हम नहीं कर पाएंगे, इसी रीत से वो डर कर थोड़ा दूर रहते हैं। पर जिसको जिन्होंने देखा है कि हमारे जीवन से हमें बहुत शांति मिली है या सेंटर पर आकर हमारे आश्रम का वातावरण इतना शांत और ये देखकर फिर जब तकलीफ होती है तब आते हैं कि चलो अभी ब्रह्मा कुमारियों का सहारा लेवे या उनके बाबा का सहारा लेवे। तो बाबा ने हमारी दिनचर्या बिल्कुल बदल दी। सबसे पहले हमको कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो, सवेरे 3:30 to 4 के बीच में उठो, 4 to 5:15 योग करो। तो सबसे पहली श्रीमत है देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह भान छुड़ाया, देह से मुंह छुड़ाया, अपने को आत्मा समझना, देह के संबंधियों को अभी अलौकिक दृष्टि से देखना है, उनको भी बाबा के बच्चे ऐसे समझ कर चलना है, मेरा नहीं। अब तक हम मेरा मेरा करते क्या होता था, मुंह में फंस जाते थे,
तो बाबा कहते हैं रहो साथ में, रहे आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार, परंतु मेरापन ना हो। तो प्यारा भी रहो न्यारा भी रहो। और बाबा ने अपने जीवन से करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा परिवार के साथ रहता था, यज्ञ में भी परिवार सहित 14 साल तो रहा, परंतु न्यारा बिल्कुल, जरा भी मोह नहीं रहा। जसोदा जो उनकी लौकिक युगल थी, उनको भी ब्रह्मा बाबा को बाबा कहना पड़ा। पत्नी के लिए पति को बाप कहना कितना मुश्किल हो सकता है, परंतु ऐसी उनकी भी दृष्टि बदली और उनकी लौकिक बेटी निर्मल शांता ज्ञान में थी, बहू ब्रजेंद्रा दादी ज्ञान में थे, उनको भी जिस दृष्टि से अन्य दादियों को देखता था, अन्य समर्पित बहनों को देखता था, उनकी दृष्टि में जरा भी भेद नहीं था। यदि संजो मेरापन होगा तो क्या होगा, उसे ज्यादा पक्षपात रखेंगे, उसको ज्यादा फेवर करेंगे, परंतु ये नहीं था। अव्यक्त होने के अव्यक्त साकार में भी तो उन्होंने मम्मा को आगे रखा, अपनी बेटी बहू युगल किसी को नहीं रखा, यज्ञ माता नहीं बनाया, मम्मा को यज्ञ माता बनाया। तो क्वालिटी देखकर उन्होंने उनको आगे बढ़ाया और उनके अव्यक्त होने के बाद भी उनकी बेटी बहू नहीं आई गद्दी पर, मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी आए। तो ऐसे प्यार हर एक से करते थे, परंतु न्यारे। तो इसी रीत से बाबा कहते हैं हर एक भाई बहने को गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, परंतु ट्रस्टी बनकर, मेरापन ना हो। और जितनी आत्मिक दृष्टि होंगी, भाई भाई की दृष्टि हो जाएंगे। प्यार की भावना रहेंगे, शुभ भावना रहेंगे, शुभ कामना रहेंगे। और स्मृति हमारी क्या होनी चाहिए, आत्मा, मैं आत्मा हूं, सब आत्मा है, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना है, भाई भाई की दृष्टि से देखना, चाहे परिवार में कुछ भी संबंध हो, उनको भाई भाई की दृष्टि से देखना है। फिर सवेरे उठते ही पहला हमको बाबा की याद होनी चाहिए। चेक करना है अपने संकल्पों पर कि सवेरे उठते पहले, कई बार कईयों को क्या होता है, टाइम क्या हुआ, घड़ी देखेंगे, या सारे दिन में क्या काम करना है वो सोचेंगे, परंतु अभी अपना अटेंशन चेक करना है। उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा कहते हैं और अमृत वेला, जो कि हमारी कमाई का श्रेष्ठ समय है, जिस समय हम अविनाशी कमाई कर सकते हैं,
सुख शांति आनंद, और हम जो भी बाबा से शक्तियों का खजाना लेना है वो ले सकते हैं। तो इसलिए संगठित रूप में, या जो घरों में रहते हैं सेंटर पर नहीं जा सकते हैं नेचुरली घर में, पर अपना ऐसे नहीं बेड में ही योग करें, उठकर फ्रेश होकर बाबा की कमरे में या कोने में या जहां भी बैठकर योग करें अमृत वेला, वो मिस ना करें। क्योंकि ये कमाई है, श्रेष्ठ कमाई करने का श्रेष्ठ समय। दूसरी दिनचर्या में हमारा मुरली क्लास, ज्ञान की मुरली पढ़ना सुनना जो भी है, क्योंकि आजकल बिजी जमाने में आप में से कौन है रोज सेंटर पर जाने वाले, जरा हाथ उठाना। अच्छा है इंडिया में तो फिर भी रोज क्लास में जा सकते हैं, विदेश में रोज नहीं जा सकते हैं, डिस्टेंस इतना होता है सब काम करने वाले, भाई है बहने है नौकरी करने वाले हैं, रोज नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए अभी आजकल तो बहुत अच्छी सिस्टम है, कौन सी, पीएम टीवी। हाँ, पीएम टीवी पर आप लोग घर बैठे रतन मोहिनी दादी का क्लास, नलिनी बहन का क्लास, डॉक्टर लुहार के वेबसाइट पर मुरली सुन सकते हैं आजकल तो। इसलिए ये देखना है कि दिन में ब्रेकफास्ट के पहले बाबा कहते हैं मुरली जरूर सुनो या पढ़ो। मुरली पढ़े बिगर या सुने बिगर शरीर को भोजन नहीं देना है, पहले आत्मा को भोजन देना है। तो मुरली का महत्व बताया कि ज्ञान सुनना है, फिर मनन मंथन करना है, फिर धारण करना है। ऐसे नहीं कि मुरली सुनी और सारे दिन में फिर कुछ ना करो, नहीं, ज्ञान मनन मंथन करो। और आजकल तो बाबा कहते हैं कि हरेक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव करो, अनुभवी मूरत बनो, तब विजय का झंडा लहराएगा। तो मनन मंथन धारण और अनुभव करना है मुरली का। तो सारा दिन अपने मन को बिजी रखो, या तो ज्ञान मंथन में, या तो कर्मयोगी जीवन में, या बैठकर योग करो। तो इसलिए मुरली का अध्ययन। फिर बाबा कहते हैं शुद्ध भोजन खाओ, सात्विक, बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन खाओ और खिलाओ, अशुद्ध भोजन न खाना है न खिलाना। खरीदने वाले के ऊपर भी पाप, पकाने वाले के ऊपर भी पाप, खाने वाले पर भी पाप, खिलाने वाले पर भी पाप चढ़ता है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है, परंतु प्याज लहसुन भी नहीं। और अज्ञानी के हाथ का पकाया हुआ भी नहीं। लौकिक में भी ब्राह्मण क्या करते हैं अभी तो मालूम नहीं, क्या करते हैं आज से 700 साल पहले तो हमने देखा था कि लौकिक ब्राह्मण भी अपने ऊंच कुल के ब्राह्मण के हाथ का खाएंगे, उससे नीच कुल के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। और कई है स्वयं पाकी कहते हैं अपने आप को, खुद का पकाया हुआ खाएंगे। तो हमें भी अटेंशन रखना है कि जो संजात तबीयत के कारण के कुछ अपना हाथ से नहीं पका सकते हैं, या जो भाई लोग हैं ज्ञान में हैं उनकी युगल ज्ञान में नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, पकाएंगे तो युगल ही। यहाँ दंगिया में तो भाई लोग बेचारे किचन में जा ही नहीं सकते हैं, किचन में जाए तो भी सब घर वाले नाराज हो जाएंगे, ये क्यों अपने हाथ का खाना पकाते हैं। विदेश में तो चल जाता है, जो पकाते हैं जिसको जो करना है कर लें, इंडिया में नहीं चलता। तो क्या करना है फिर, चलो पत्नी ज्ञान में नहीं है वो पकाती है, या माँ ज्ञान में नहीं है वो पकाती है, तो उसको अच्छी दृष्टि देकर बाबा की याद में रहकर उसको शुद्ध करके उसमें अच्छे वाइब्रेशन डाल के फिर खाना है। और खाते समय भी बाबा की याद, पकाते समय भी बाबा की याद। और यदि किचन शुद्ध है, फ्रिज शुद्ध है, तो भोग लगाकर खाना। बाबा कहते हैं, कई बार दादी कहती है कि भोग लगाए बिगर बाबा को खिलाए बिगर खाता है वो चोर है। हाँ, दादी अपनी मिसाल बताती थी कि जब क्या हुआ कि वो बीमार थी, जानकी दादी पुणे में थी, बीमार थी तो खाना पका नहीं सकती थी, तो खाती नहीं थी। तो बाबा ने कहा, तुम बीमार हो तुम नहीं खाती हो, पर बाबा थोड़ी बीमार है, बाबा को क्यों नहीं खिलाती है। मतलब बाबा का ये कहना था कि कम से कम एक टाइम तो बाबा को खिलाकर खुद भी खाओ, नहीं तो बीमार लोग हैं वो थोड़ा कभी कभी सुस्ती भी आ जाती है, फल खा के चला लेते हैं। तो बाबा ने कहा, नहीं जरूर एक टाइम कम से कम रोटी सब्जी पकाकर भी बाबा को खिलाकर खाओ। तो इसलिए शुद्ध भोजन, और फिर पवित्रता, ये तो हमारा मुख्य है, ब्रह्मचर्य। क्योंकि सात्विक भोजन वेजिटेरियन भोजन तो बहुत खाते हैं, इंडिया में कई वैष्णव है वो भी प्याज लहसुन वगैरह का वेजिटेरियन खाते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य की पालना। और सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सब विकारों को छोड़ना है, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष वैर ईर्ष्या, सब विकारों का त्याग। तो ये देखना है कि हमने सब विकारों का त्याग किया है। आज भी बाबा ने अलबेलेपन और आलस्य के ऊपर खास बताया। ऐसे ना हो कि आप पुरुषार्थ में अलबेलेपन धारण करो, फालतू संकल्प आया, व्यर्थ संकल्प आया, या अपने आप को बिजी नहीं रखा। बिजी नहीं रखते हैं तो क्या होगा? बाबा कहते हैं आप बिजी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आपको माया बिजी करेंगी। इसलिए आज भी बाबा ने कहा कि कर्मयोग भी जरूर करो, चाहे कोई भी है, सिर्फ ज्ञान योग नहीं, कर्मयोग भी करो, उसका भी मार्क्स है। और एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना हमारा अटेंशन हो। तो इसलिए देखना है कि हम जरा भी आलस्य या अलबेलेपन में भी ना हो। शुरू शुरू में तो बाबा कहते थे चलो मनसा तूफान आया तो कोई बात नहीं, अभी तो क्या कहते हैं मनसा भी तूफान ना आए। रात को स्वप्न में भी अपवित्र संकल्प ना आए, इतनी हमारी पवित्रता हो। तो संकल्प बोल कर्म पर इतना हमारा टेंशन हो जो सूक्ष्म में भी कोई विकार ना हो। चलो धन का लोभ ना हो, खाने का लोभ ना हो, और इच्छा भी सूक्ष्म लोभ है। नहीं कहेंगे आज हमको भेलपुरी खाने की इच्छा हुई या पानी पूरी खाने की इच्छा हुई या गोलगप्पा खाने की इच्छा हुई तो ये भी क्या हुआ? इच्छा हुई माना लोभ है। आकर्षित हुए, प्रभावित हुए माना काम विकार। तो इसलिए विकार का अंश मात्र भी ना हो, हर एक विकार का। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी तो हमारी विशेष विशेषता है। हम कहते हैं ना कि आज साधु संत महात्मा भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं कहीं, उनके भी स्कैंडल सुनते हैं ना कि फलाने साधु ने अपनी शिष्या के साथ व्यवहार किया, या सब साधु सन्यासियों का, प्रिस्ट का, बुद्धिस्ट मंग का, सबका ऐसा ऐसा होता है। और हम लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते, पति पत्नी साथ में रहते हुए पवित्र रहते हैं, तो हम तो चैलेंज करते हैं ना उनको, साधु संत महात्मा को, कि आप तो घर में रहकर ना रह सके, हम तो घर में रहकर निर्विकारी रहते हैं। तो ये समझो हमारी मुख्य बात है, और ये बाबा की शक्ति के आधार पर हम कर सकते हैं संपूर्ण पवित्रता। और बाबा कहते हैं अपना नियम बनाओ, कौन से समय आप योग में बैठेंगे। अमृत वेला तो बैठे, मुरली के पहले भी आधा घंटा बैठे तो अच्छा ही है, और शाम को आधा घंटा, और रात को सोने के पहले। उसके अलावा घंटे घंटे मिनट याद करना है, दो दो घंटे दो मिनट में याद में बैठना है, ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम मुकर्रर दिया, करके दिया है। और मधुबन में तो आप देखते हैं हर घंटे भी म्यूजिक बजता है एक मिनट के लिए। तो क्या है, अपना नियम बनाना है योग का। और साथ साथ बाबा ने
खुली आंख से योग करना सिखलाया ताकि हम कर्मयोगी बन सके। तो बाबा ने कहा ये भी अपना चार्ट रखो योग का कि सारे दिन में हम कर्मयोगी रहे, अमृत वेला हमारा कैसा रहा, रात को बाबा की याद में सोए, ये सारा चार्ट रखो। क्योंकि हमारा टाइटल क्या है, सहजयोगी राजयोगी कर्मयोगी राज ऋषि, सब टाइटल है। तो हमारे अंदर ऐसे रॉयल राजाई संस्कार है, क्योंकि प्योरिटी माना रॉयल्टी। तो इसलिए देखना है कि बाबा कहते हैं देखो जैसे रॉयल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका खान पान बोल चाल सब में रॉयल्टी होती है। तो इसलिए देखना है, खाना भी चलते चलते नहीं खाना है। क्या होता है, कईयों को आदत होती है चलते चलते टेस्ट करने की खाना का, या फ्रिज खोला उसमें से कुछ उठाया मुंह में डाला। नहीं, रॉयल लोग बैठ के खाते हैं और खाते समय भी आवाज नहीं। तो कई लोग हैं चाय पीते पीते भी करके चाय पीते आवाज करते हैं, तो ये भी रॉयल्टी नहीं। और विशेष साउथ इंडियन ऐसे करके ऐसे खाते हैं, आवाज आता है, तो ये भी ना होना चाहिए। खास इंग्लैंड में मैनर्स बहुत, डाइनिंग टेबल के मैनर्स होते हैं। चम्मच यहाँ हो, फॉर्क यहाँ हो, छुरी यहाँ हो, हाथ यहाँ टेबल पर नहीं रखना है, ऐसे ऐसे रॉयल मैनर्स होते हैं। तो इसलिए खाने पीने की रॉयल्टी, टाइम पर बैठकर खाओ, बीच बीच में नहीं खाओ। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बैठ के आराम से प्यार से बाबा की याद में खाओ। फिर रॉयल मैनर्स क्या है, बोलना। बाबा ने कहा धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो और एसेंसफुल हो सार रूप में, बहुत लंबा लंबा नहीं करो। रॉयल लोगों का बैठना कैसा होता है देखो, भक्ति में भी क्या करते हैं, मंदिरों में बैठते हैं ना, तो पांव सीधा करके नहीं बैठते हैं, भगवान के तरफ पांव नहीं होता है। इतने तक ये मंदिर में कईयों के ऐसे मैनर्स होते हैं, मंदिर में पीठ करके चलते नहीं, उल्टा चलेंगे कि भगवान को पीठ कैसे करें। तो ये तो हम तो ऐसे नहीं करेंगे, परंतु ये समझो हमारे रॉयल मैनर्स होने चाहिए और भक्ति के संस्कार नहीं। भक्ति में क्या करेंगे, बड़ों को पांव छुएंगे, नमस्ते करेंगे, साक्षात दंडवत करेंगे। हम तो भक्ति के भी कोई संस्कार ना हो परंतु रॉयल संस्कार हो, खाना पीना वस्त्र, रॉयल लोगों के वस्त्र भी ऐसे होते हैं। और बाबा भी कहा कि देखो आपके कपड़े क्या हो, मीडियम हो, सो सब कुछ मीडियम हो, खाना पीना फर्निशिंग जो भी है सब मीडियम हो, बहुत खर्चा ना हो, शोई ना हो और बहुत गंदा भी ना हो। क्योंकि कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ऐसी भी चीज ना सस्ती खरीदे जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो मीडियम क्वालिटी का जो कुछ हो वो लो, और देह के वस्त्र भी जैसे हमारा यूनिफॉर्म है मर्यादा युक्त, कि शरीर के अंग 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 नहीं देखने में आए, नहीं तो दुनिया वाले क्या करेंगे, सारा फिगर देखने में आएगा, ऐसे कपड़े टाइट पहनेंगे, तो ये भी ना हो। और अपने चार्ट में ये भी देखना है कि आज सारे दिन में कितनों को सुख दिया, क्योंकि चाहे बाबा का मैसेज दिया शब्दों से, चाहे किसी को सांत्वना दिया शब्दों से, दुखी है उनको दो चार शब्द बोले, चाहे किसी को तन से मदद किया, किसी को धन से मदद किया, तो सारे दिन में विशेष तो बाबा कहते हैं, हाँ शुरू शुरू में तो कहते थे कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं दिया खाना भी नहीं खाओ, जैसे मुरली के लिए कहते हैं मुरली के बगैर ब्रेकफास्ट भी नहीं करो, तो शुरू में तो बाबा कहते थे जब तक सेवा नहीं किया खाना नहीं खाओ। तो ये समझो बाबा का मैसेज देना, ये भी गाइडेंस देना, ये भी एक सुख देने का या सुख का रास्ता दिखाने का वो हो जाए। तो इसलिए देखना है कि सारे दिन में हमने कितनों को सुख दिया और किसी को दुख तो नहीं दिया, मन वचन कर्म से। यदि विकार के वश हम हो जाते हैं तो क्या होगा, उस आत्मा को दुख मिलेगा। तो ये देखना है उस आत्मा को दुख ना मिले, हम सुखी देते रहे सबको, कोई शब्द हमारा ऐसा कड़वापन ना हो, गुस्से वाला ना हो, रोब वाला ना हो, जो औरों को दुख हो जाए। हमको हरेक को रिगार्ड देना, हरेक से प्यार से मिठास से बात करनी है, रफ डफ नहीं। फिर संग पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि योग का भी एक प्रिंसिपल है संग अच्छा हो। रोज सत्संग तो करना है, परंतु ऐसी व्यक्तियों का हमारा संग ना हो, क्योंकि कई फ्रेंड सर्कल है तो क्या है, मूवी की बात करेंगे, स्पोर्ट्स की बात करेंगे, एक्टर्स की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की सारा दिन बातें करते रहेंगे। तो संग हमारा कैसा है जो आध्यात्मिक बातें करें। इसलिए बाबा कहते हैं सिनेमा नहीं देखो, सिनेमा क्या है, सिन की माँ। इसलिए सिनेमा नहीं देखना है, नॉवेल नहीं पढ़नी है, मतलब जो देखते हैं पढ़ते हैं सुनते हैं उस पर ध्यान रखना है कि वो हमारे अंदर विकारी वृत्ति तो नहीं पैदा करते हैं, या हमारा समय तो व्यर्थ नहीं जाता है उसमें। सुनने में भी परमत सुनने से, पर दर्शन करने से, पर चिंतन करने से क्या होगा, हमारा समय व्यर्थ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो और करो। हमारे पांच स्लोगन हो गए, गांधी जी ने तो तीन दिए थे, हमारे सोचने का और करने का भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो अपने ऊपर अटेंशन रखना चाहिए कि पुरानी आदत के वश, पुराने संस्कार के वश हम झरमुई झंगमुई में इंटरेस्ट तो नहीं लेते हैं, पराई पच्चर में,
कौन मरा, कौन जिया, किसकी शादी हुई, कौन भाग गया, कौन विदेश गया, किसका किसके साथ प्यार है, दुनिया में तो सारा यही बात, सारा यही बात चलता रहता है। मिलेंगे तो भी क्या क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसी फालतू बातें करेंगे। और घर में भी, यहाँ का तो मालूम नहीं, विदेश में तो कोई भी काम से आएगा ना, घर में पूछेंगे आपका सारा दिन कैसा रहा, सब ठीक रहा, पहली बात ये पूछेंगे। हाँ, बॉस कैसा रहा, आपके साथी कैसे रहे, आदि आदि, मतलब ऐसी बातों में फालतू समय नहीं गंवाना है। और आजकल ये है, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंटरनेट सर्फिंग, तो उसमें भी टाइम बहुत गंवाते हैं लोग। और टाइम तो गंवाते हैं परंतु कई बार माया में फंस जाते हैं। जवान लोग हैं, फेशियल बुक पर मीडिया अरे फ्रेंडशिप बनाते हैं, और इतने तक कि हमने हमारे सुनने में आया कि एक नेपाली बहन ब्रह्मा कुमारी थी, उसने कोई मुस्लिम के साथ फेसबुक में फ्रेंडशिप करके शादी कर ली। तो ऐसे भी फंस जाते हैं जवान लोग। आज क्या है, हमने सुना है कई जवान लोग हैं, खास रात को भी सारा फोन पर फ्रेंड से बातचीत करते रहते हैं, कंप्यूटर पर बातचीत करते रहते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, और आकर्षित नहीं, फ्रेंडशिप में से आकर्षण यंग होते हैं, आकर्षण हो जाता है, नाम रूप में फंस जाएंगे या फिर लव हो जाएगा। तो इसलिए जवानों को तो खास उसमें हम कहते हैं बिल्कुल ध्यान रखें कि ऐसे समय भी न व्यर्थ गंवाए और माया के फंदे में फंसे मत। और आज भी बाबा ने मूली में बहुत, कई सालों से बाबा कहते हैं व्यर्थ का खाता खत्म करो, जमा का खाता बढ़ाओ। तो इस पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय है हमारा जमा करने का समय, अपना भाग्य बनाने का समय। तो समय अमूल्य है, हमारा संकल्प अमूल्य है, और बाबा से मिला हुआ जो श्वास है, बोल है, ज्ञान का खजाना है, सब ये खजाने दुआओं का खजाना है। तो ये खजाने हमको खूब जमा करने हैं, गंवाना नहीं है एक सेकंड भी। भगवान तो कितना बताया कि आपका एक श्रेष्ठ संकल्प क्या कर सकता है, पुण्य का खाता जमा करो कि आप गरीबों को शाहूकार बना सकते हो, भटकती हुई आत्मा को आप ठिकाना दिखा सकते हो लाइट हाउस बनकर, दिल से कस आत्माओं को उमंग उल्लास दिला सकते हो, उन्हें उम्मीद जगा सकते हो। तो ये देखना है कि हमें अपना समय ऐसे सेवा करके पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा ने कहा कि जो अपना समय गंवाएंगे, खजाना लेंगे नहीं, जमा नहीं करेंगे, तो अंत में अपनी खाली झोली कर देखकर पछताएंगे। और जिन्होंने झोली भरी है वो क्या है, सुख के झूले में, शांति के झूले में, आनंद के झूले में झूलते रहेंगे।
तो इसलिए देखना है कि हमने कितना खजाना जमा किया है। देखो दुनिया में भी जो खजाना जमा करते हैं वो क्या होता है उसका, जिन्होंने खजाना जमा किया है क्या है, अपना बैंक बैलेंस ऐसा बढ़ता जाता है, नशा भी बढ़ता जाता है ना। तो इसी रीत से हम भी जितना खजाना जमा करेंगे इतनी हमारी खुशी, नशा, शांति सब बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए ऐसे भी नहीं कि हमने तो पाप कोई नहीं किया, हम तो सो गए 6 घंटे के बजाय 8 घंटे सो गए, हमारी आदत है नहीं। कई बार कई लोग कहते हैं अपनी आदत से मजबूर होते हैं, क्या करें आदत है ना, थक जाते हैं ना। भगवान ने कहा थकना ये भी आलस्य की निशानी, जो बोलते हैं थक जाते हैं, क्या करें कैसे करें, हो सकता इतना ही कर सकते हैं ना, नहीं तो ये तो क्या हो गया गंवाने की बात, ये जो बहानेबाजी करते हैं ना गंवाने की बात, कमाई नहीं होती उनकी। इसलिए सूक्ष्म में भी हमारा अंदर अलबेलापन, आलस ना हो, या ऐश आराम करने की भावना ना हो, क्योंकि जो आलसी होते हैं वो क्या करेंगे, होता है चलता है करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, उनके लिए आज आती नहीं, कल करेंगे, कल कल कल, कल रोज कल के ऊपर होगा। तो इसलिए कल के ऊपर नहीं रखना है, जो करना है आज या अभी। तो इसलिए बाबा के ये जो सब स्लोगन है पक्के याद रहे, जो करना है अब कर लो, कल का भरोसा नहीं। और ड्रामा पर अडोल रहना है, साक्षी होकर सब चीजें देखते रहो। तो कोई देख, कोई भी सीन देखकर हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प ना आए कि ये क्या, ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, जो होता है ड्रामानुस। क्यों क्या में भी हमारा समय वेस्ट ना जाए, क्योंकि जब ड्रामा पर अडोल नहीं है तो समय हम वेस्ट करेंगे। तो इसलिए हमको देखना है जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो होने वाला है और भी अच्छा होगा। तो इसलिए न चिंता में व्यर्थ संकल्प गंवाने हैं, न पास की बातों सोचने में अपना व्यर्थ गंवाना है समय, न सोने में खाने पीने में, वो गीता है न सो रात सवाई सो के दिवस गवाया, खा के हीरे जैसा जन्म मोल कौड़ी बदले खोया। तो इसलिए देखना ऐसे भी नहीं सारा दिन अपना घर काम किया समझते हमारी ड्यूटी पूरी हुई, नहीं, बाबा की याद से कितनी कमाई जमा की, ज्ञान का मनन मंथन करके कितना जमा किया। तो ये अपना लक्ष्य होना चाहिए कि बाबा के जो दिए हुए खजाने हैं हम जमा करें, जो हमको 21 जन्म की अपनी प्रालब बनेंगे। इसलिए अभी व्यर्थ संकल्प बोल कर्म में अपना समय गंवाना नहीं, न साधारण, बाबा कहते अभी तो आपका साधारण संकल्प भी ना हो, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, किसने क्या पहना है आदि आदि, हमारे श्रेष्ठ संकल्प चले। तो एक संकल्प से भी बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प से इतने शक्तिशाली है, जो जो संकल्प करेंगे वो प्रैक्टिकल में होगा। तो हमें जो भी समय मिले ज्ञान के मंथन में, बाबा की याद में, अपने सेवा में समय लगाना है, ताकि हमारा भविष्य का हम 21 जन्म का जमा करें प्रारब्ध, क्योंकि ये समय है अपना भविष्य बनाने का और पास के विकर्म विनाश करने का। तो इसलिए जितना भी योग में बैठो वो भी हो सके तो बिंदु स्टेज में निसंकल्प बिंदु बनकर बिंदु को याद करो, तो उससे क्या होगा कि हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो इसलिए ये समय का महत्व समझना है, मूल्य समझना है, और इस समय को संकल्प को हमें बहुत सार्थक करना है, व्यर्थ नहीं करना। ओम शांति। तो अब हम घंटा भर याद में बैठेंगे।
ओम शांति। दीदी जी ने हमें बाबा की श्रीमत क्या है और उसे जीवन में धारण करने से हमें क्या क्या लाभ होता है बहुत ही सहज और सरल भाषा में सुनाया, लेकिन वो ऐसी गहन बातें हैं जो अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र बना देता है और हम सहज ही बाप दादा की आशाओं को पूरा कर सकते हैं। तो दीदी जी का हम दिल से थैंक्स अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी हम सभी नुमा शाम का योग करेंगे, बहुत ही पावरफुल स्थिति में, जैसे दीदी जी ने बताया कि बिंदु रूप स्थिति, निसंकल्प स्थिति, बस मैं और मेरा बाबा।